っていう。オーム・シャンティ。オーム・シャンティ。सदा शांति की समान की स्वरूप में स्थित रहने वाले शांति की सागर बाप की गोद में फलने वाले शांति धाम की यात्रा करने वाले शांति की दुनिया धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी बाप दादा का शांति दूत आत्माओं को विशेष करके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नेपाल के खास भाई बहनों को और भी सभी भारत की कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों को प्रातःकालीन प्रणाम। बाप दादा इस धरा पर 81 ईयर से हम बच्चों को त्रिकाल ज्ञान सुनाकर त्रिनेत्री बनाकर त्रिकालदर्शी बनाकर देहाभिमान से आत्माभिमानी बनाकर उड़ती कला सिखाकर बाप समान बनने के लिए वरदान उनसे वर्षा करके हर क्षण प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे बच्चे मेरे समान बन जाए मेरे बच्चे फरिश्ता बन जाए मेरे बच्चे देवता बने मेरे बच्चे विश्व का मालिक बने मेरे बच्चे विश्व कल्याणकारी बने मेरे बच्चे हर सेकंड विश्व को सकाश देने वाले शक्तिशाली आत्मा बने मेरे बच्चे हर संकल्प से दूसरों को भी शक्ति और वरदान देने वाले बने। मुख से तो ज्ञान सुनाते हैं कर्म से भी आदर्श कर्म करके दूसरों को प्रेरणा देते हैं परंतु वो उससे भी ऊंचा स्थिति है संकल्पों द्वारा वृत्ति और दृष्टि के द्वारा आपके जीवन के द्वारा लोगों को प्रेरणा दे सके वरदान दे सके शक्ति दे दे और ऐसी बनाने के लिए बाप दादा निरंतर हम बच्चों को अनेक युक्तियां बताते हुए वरदान देते हुए शक्ति देते हुए अभी बाहों फंसा करके सूक्ष्म वतन में इंतजार कर रहे हैं। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हम सभी सूक्ष्म वतन में यात्रा करने के लिए तैयार हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात। कुछ लोगों को थोड़ा स्वर उठता नहीं है, अभी तैयार नहीं लगता है, क्योंकि उनको ये दुनिया बहुत अच्छा लगता है। संगम युग भी अच्छा है, क्योंकि जितना समय संगम युग में रहेंगे उतनी बार मुरली सुनने को वरदान मिलता है, परंतु मुरली सुनने के बाद में योग करने के बाद में बाबा का श्रीमत फॉलो करने के बाद में आखिर उसका परिणाम क्या होना चाहिए? फरिश्ता बनना है। देखो, देवताओं का भी पांव जो है धरती पर है, परंतु फरिश्तों का पांव धरती पर नहीं है। फरिश्ता अर्थात उनका बुद्धि, शरीर की बात नहीं कहता हूं, शरीर तो धरती पर नहीं रहेंगे तो कहां रहेगा? परंधाम में तो शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म वतन में शरीर नहीं रहता है, और धरती पर जन्म लिया तो धरती पर पांव तो रहेगा, परंतु बुद्धि रूपी पांव, शरीर को चलाने वाले, शरीर को भी संभालने वाले, शरीर से ही कर्म करने वाले, शरीर से ही हर प्रकार का सुख शांति दुख जो भी है अनुभव करने वाले तो आत्मा शरीर में, परंतु उनका बुद्धि जो है शरीर से डिटैच हो, देहाभिमान से डिटैच हो, देह की दुनिया से डिटैच हो, देह की अनेक बंधनों से डिटैच हो, उससे उठ करके फरिश्ता बन रहे हैं, वो अनुभव करना ही संगम युग में हर ब्राह्मणों का लक्ष्य, हमारा ईश्वरी पढ़ाई का लक्ष्य है, उस देही अभिमानी बनने का लक्ष्य। तब तो बाबा कहते मेरे बच्चे बाप समान बने, क्योंकि विदेही बनना अर्थात बाप समान बनना, अशरीरी अनुभव करना बाप समान बनना, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करना अर्थात बाप समान बनना, क्योंकि बाबा को व्यर्थ संकल्प नहीं आता है, संकल्प आता है। संकल्प के परिणाम ही बाबा ने बच्चों को बच्चों से मिलने के लिए आता है, क्योंकि संकल्प में स्नेह है, संकल्प में प्यार है, संकल्प में शक्ति है, संकल्प में वरदान है, संकल्प में नया रचना है, संकल्प की रचना का बेस है, हर कार्य की बेस है। परंतु ऐसी संकल्प करके ही बाबा ने प्रतिज्ञा करके आए हैं इस घोर कलयुग को सत्ययुग में बनाने के लिए, इस अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाने के, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए, देही अभिमानी आत्मा को देहाभिमानी आत्मा को विदेही आत्मा बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी कठिन काम है। परंतु वो काम बाबा ने करा रहा है और खुद भी बच्चों को शक्ति दे रहा है। ऐसी बाबा ने लगभग 81 ईयर से निरंतर एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। अभी बाबा ने तब से मुरली सुना आज तक छुट्टी लिया बाबा ने, भले साकार मुरली का अव्यक्त मुरली का, अभी दोनों मुरली का रिपीटेशन भी होता है और रिवाइज कोर्स, क्योंकि उन दिनों में बहुत लोगों ने अभी जो उपस्थित है साकार बाबा को ना देखा ना मुरली सम्मुख में सुना, और अव्यक्त बाबा का भी बहुत लोग आज के दिन में सभा में बहुत होंगे, लोगों ने अभी तक अव्यक्त बाबा कौन है, क्या है, कैसे आते हैं और कैसे मुरली चलाया इतने साल, लगभग 50 साल से बाबा ने अव्यक्त मुरली भी चलाया है, हिस्ट्री हॉल से लेकर के मेडिटेशन हॉल से लेकर के ओम शांति भवन से लेकर के अभी डायमंड हॉल, यहाँ सब स्थानों पर बाबा अव्यक्त बाबा ने, ब्रह्मा बाबा केवल हिस्ट्री हॉल में ही आते थे, हिस्ट्री हॉल मधुबन में पांडव भवन में, जो आज के दिन में जो हिस्ट्री हॉल कहते हैं, जो हिस्ट्री हॉल में बाबा के सम्मुख में 50-60, 100-150 आ जाए तो बड़ी बात थी। उस समय में बाबा ने जो मुरली सुनाया था, आज भी हम मुरली सुनते ऐसे बाबा ने उन दिनों में जो मुरली सुनाया था हम सबको याद करके सुनाया, हम सबके मन में रख करके सुनाया, आने वाले बच्चों को आह्वान करते हुए सुनाया था, उसका अनुभव आज हम बच्चे सभी कर रहे हैं। परंतु ऐसे मुरली का सुनते ही हमारा शक्ति और वरदानों का वर्षा अनुभव करते हैं, भाग्य का एक तरफ भाग्य विदाता एक तरफ भाग्य, हमारा भाग्य का भी खुलता दरवाजा खुल रहा है, एक तरफ भाग्य विधाता हमारा साथ है, भगवान हमारा साथ है तो गीत हम सुनते हैं। अभी भी भक्ति मार्ग में भी लोग कहते थे परंतु उनका जीवन में अनुभव नहीं है, उसके लिए ढूंढते हैं भटकते हैं और उसके लिए अनेक अलग रूपों में अनेक अनेक देवताओं में अनेक अनेक मंदिरों में मस्जिदों में गिरिजाघर में ढूंढते रहते हैं। परंतु हम तो ढूंढने का दिन खत्म हो गया, अभी तो हमारा साथ है बाबा, और ऐसी साथ ही बाबा का लक्ष्य एक ही है, हम हरेक बच्चों को बाप समान अशरीरी भव अव्यक्त भव निराकारी भव निरहंकारी भव और पवित्र भव सदा योगी भव, सिर्फ पवित्र भव नहीं सदा योगी, योगी थोड़ा कुछ समय के लिए योगी, कुछ घंटे के लिए योगी, कुछ वर्षों के लिए योगी नहीं है, संगम एक पूरा योगी भव, योगी अर्थात बाप के साथ चलने वाले उड़ने वाले, हर कर्म बाबा की याद में करने वाले, हर दृष्टि वृत्ति बाप समान होने वाले, उसको योगी कहते हैं। और उसको ही ऐसी कर्म करते हैं बाप को साथी बना करके सहयोगी बना करके, हम उनका सहयोगी बन करके हम कर्म करते हैं, तब तो उसका जीवन योगी जीवन, उसका योगी जीवन ऊंचा जीवन, देवतों से भी ऊंचा जीवन हम कहते हैं, बाबा भी कहते हैं ये ब्राह्मण जीवन देवता जीवन से भी ऊंचा है, क्योंकि इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया का नहीं है, मुक्त है, मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव, भले सत्ययुग में जीवन मुक्ति का अनुभव है परंतु संगम युग में उसकी अनुभव त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री होने के कारण हमको संगम युग में ही मुक्ति, किससे मुक्ति, पाप से मुक्ति, दुख से मुक्त, अन्याय से मुक्त, अशारीरिक बन के अनुभव करने का, देहाभिमान से मुक्त होकर के सदा एक रस अवस्था की स्थिति बनाने का, एकाग्र चित्त एक सेकंड में बाबा को, जैसे आजकल की दुनिया बटन से चलता है, टेलीफोन भी बटन करो बटन से सारी दुनिया का किधर भी करो, बटन करो तो टेलीविजन ऑफर ऑन हो जाता है ऑफ हो जाता है, बटन करे से तो बम की वर्षा हो सकता है। आज की दुनिया में लोग तो आजकल तो दुनिया में ये कंपटीशन चल रहा है, मेरे पास भी बटन है, दूसरे कहते मेरे पास भी बड़ा बटन है, ऐसी एक कंपटीशन दुनिया में चल रहे, ऐसी दुनिया में ब्राह्मणों की आत्माभिमानी का बटन प्रेस करने का, आत्मज्ञान का बटन प्रेस करना, एक सेकंड में सोच स्मृति स्वरूप नष्ट, मोह स्मृति स्वरूप नष्ट, मोह होकर के स्मृति स्वरूप में रहना, अर्थात शक्तिशाली स्थिति में रहना, साक्षी स्थिति में रहना, साथी बन के रहना, एक तरफ बाबा का साथी और ड्रामा का साक्षी। ड्रामा का हर घड़ी हर सेकंड परिवर्तनशील ड्रामा है, प्रकृति परिवर्तनशील है और हर सीन चेंज होता रहता है। ऐसे समय में हमको साक्षी होकर के देखना और जहाँ जहाँ हमारा आवश्यकता है, जहाँ हमारा सेवा है, जहाँ हमारा सहयोग की जरूरत है, जहाँ हमारा कल्याणकारी का कर्तव्य है, ईश्वरीय कर्तव्य, वहाँ हमारा संकल्प चले, हमारा कर्म चले, वह हमारा बुद्धि चले, हमारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है, उसको करें। अन्यथा कोई भी व्यर्थ संकल्पों का सृष्टि ना करे, और यदि करता है तो इससे सिद्ध होता है आत्मा अभी तक परमात्मा को सही पूरा नहीं पहचाना, यदि पहचाना है तो उनके फिर भी संस्कार पूरा संपूर्ण पवित्र नहीं बना, कोई न कोई अपवित्रता का अंश, अज्ञान का अंश, और उसका अप्लाई करने का, ज्ञान का अप्लाई करने की शक्ति में एक्सपीरियंस की कमी है, वह उनका अनुभव कम होने के कारण कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि अटक जाता है, लटक जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, वह उनका देहाभिमान के चक्कर में आ जाता है। जहाँ देहाभिमान का चक्कर आता है, निंदा स्तुति में और परिस्थिति में वश हो जाता है। कुछ फरिश्ता वश करने वाला है, वश होने वाला नहीं। फरिश्ता किसी परिस्थिति में, प्रकृति में, वायुमंडल में, व्यक्ति में, वैभवों में व अन्य साधनों सुविधा की वश नहीं होने वाले है, परंतु बाबा कहते हैं आपको निरंतर बाबा का साथी बनकर के चलने का अभ्यास करना चाहिए, साथ चलने का। परंतु साथ तो पांव नहीं चलेगा, हाथ नहीं चलेगा, कर्म भी बाबा के साथ कर सकते हैं बाबा की याद में रख करके। इसके लिए बाबा ने कहा था निरंतर योगी, योगी तो बाबा के साथ है, उनका संग संग में रहता है, बुद्धि उनके साथ है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कर्म भी विकर्म नहीं बन सकता है, कुकर्म नहीं कर सकता है, पाप कर्म नहीं सकता है, कर्म एक आदर्श बन सकता है, कर्म एक शक्तिशाली बन सकता है, कर्म दूसरों को वरदान के रूप हो सकता है। इसके लिए योगी तो हम सब हैं, और वो योग इतनी पावरफुल योग हो, वायुमंडल को चेंज करने का योग हो। देखो मधुबन में आता है, शांतिवन में आता है, तो लोगों को ये दरवाजा प्रवेश करते ही उनके अंदर शांति का वाइब्रेशन मिलता है, शक्ति का अनुभव करते हैं, वरदान का अनुभव करते हैं, कुछ बाबा का याद आता है। बहुत दुनिया की बातों से, दुनिया की रास्ते से गुजर के आते हैं, परंतु इधर आते हुए वो सब भूल जाते हैं। भूलते हैं ना, नहीं भूलते हैं, इसका मतलब नहीं भूलता है तो यही है, उनका बुद्धि और भी दुनिया से अटका हुआ है, वह उनको और भी बुद्धि किंचा तान में है, वह बुद्धि और भी ने कई कई संबंधों में, वस्तुओं में, वैभवों में, परिस्थितियों में, समस्या में, घिरावट में है, उसको पूरा डिटैच नहीं है, तब तो बुद्धि ज्यादा है। बुद्धि तब जावे जो बहुत आवश्यक ईश्वरीय कार्य है, तब तो नहीं तो बुद्धि जाता है, इसका मतलब अपने बुद्धि अपने कंट्रोल में नहीं, अपने बुद्धि का लगाम अपने हाथ में नहीं, इसका मतलब यह है बाबा का शक्ति को हम यूज करने में और बाबा का ज्ञान को यूज करने में, बाबा का दिया हुआ विधि को, श्रीमत को कहीं ना कहीं उल्लंघन करने का आदत है, तब तो बुद्धि इधर उधर भटकते। और ऐसी अभी तो भटकने का बुद्धि बंद, फरिश्ता मना भटकने वाला नहीं, फरिश्ता माना दूसरों को ठिकाना देने वाला, फरिश्ता माना वरदान देने वाला, फरिश्ता माना होप, होप फॉर मैनकाइंड। यूनाइटेड नेशंस में प्रीएम्बल, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन जो कहते हैं, उसके ऊपर लिखे यूएन इज होप फॉर मैनकाइंड लिखा हुआ, परंतु मैं समझता हूँ यूएन इज नॉट होप फॉर मैनकाइंड, बाबा चिल्ड्रन फॉर आर द होप फॉर मैनकाइंड। बाबा का बच्चे हैं जो विशेष करके तपस्वी बच्चे हैं, योगी बच्चे हैं, फरिश्ता बच्चे हैं, श्रीमत को अपनाने वाले बच्चे, दे आर द होप फॉर मैनकाइंड, दे आर द होप फॉर द न्यू वर्ल्ड, वही होप है दूसरा कोई ओफ नहीं है। जब से यूएन बना तब से लेकर के बहुत युद्ध चला, आज भी चल रहा है, प्रतिनित्य डेली कहीं ना कहीं विश्व में कोने कोने में युद्ध चल रहा है, युद्ध का बंद नहीं हुआ। और भी कई लोगों ने बहुत आस्था रखा बहुत चीज़ों में, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाएंगे, परंतु नाइदर यूनाइटेड नेशंस बट यूनाइटेड माइंड इज द होप फॉर मैनकाइंड, डिवाइन माइंड इज द होप फॉर मैनकाइंड, डिवाइन रिलेशन इज द होप फॉर मैनकाइंड, डिवाइन रियलाइजेशन इज द होप फॉर मैनकाइंड, गॉड इज द होप फॉर मैनकाइंड। इसके लिए बाबा ने इस समय में सारी सृष्टि को पवित्र बनाने का कार्य किसको दिया है, हम बच्चों को दिया। मैं उस दृष्टि से देखता हूँ, विशेष करके उत्तर प्रदेश को देखता हूँ, उत्तराखंड को देखता हूँ, इस भारत की जितनी सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तो कहाँ है, किधर है, उत्तर प्रदेश में है। कृष्ण से लेकर के राम से लेकर के शिव बाबा को लेकर के जितने भी हैं सभी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल है वह नहीं है, आप लोगों को तो ताली नहीं बजाया, इसका मतलब आप लोग अपनी प्रांत की महिमा, आपकी प्रांत की श्रेष्ठता को और आपकी पाम की चरित्र को अपने प्रांत की देश में जो हो रहता है उसकी आध्यात्मिक भूमि को पूरा नहीं जानते हैं। इसका मतलब है आदि से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मंदिर कृष्ण की मंदिर उत्तर प्रदेश में, राम का मंदिर उत्तर प्रदेश में है, राम का राज्य भी उत्तर प्रदेश में था, अभी तो राम के राज्य में जो हो रहा है आप सभी जानते हैं, परंतु जो होने वाला वो भी जानते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु राम से लेकर के तभी उसके सिवा जो भी है, शिव बाबा के मंदिर से वाराणसी लो, मथुरा लो, वो अयोध्या लो, और अन्य भारत की बहुत प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार ले हो, ये सारी तीर्थ स्थल जो है। क्यों ये तीर्थ स्थल पड़ा, क्योंकि जहाँ जहाँ ईश्वरीय महावाक्य को, मुरली को, ज्ञान को सुनाया, दर्शाया, चरित्र कराया, इसको अनुभव किया, इन स्थानों पर विशेष करके संगम युग में विशेष बाबा का ज्ञान का वर्षा हुआ, उसका सारी धरती पर आप लोगों ने फैलाया, वह आपने खुद उसको साकार किया, उस साकार करने के परिणाम स्वरूप वहाँ तीर्थ स्थल बना। क्यों, अभी तो ज्ञान स्थल बना है, योग स्थल बनाया, उसका परिणाम स्वरूप भक्ति स्वरूप, भक्ति में उसको एक तो ज्ञान तीर्थ स्थल बना, उससे पहले राजस्थल, सो भारत के सबसे मुकुट जो कहते हैं उत्तर प्रदेश, ऐसी विशेष करके कहीं ना कहीं विशेष आप लोगों ने ईश्वरीय कर्म किया है, ईश्वरीय कर्म का परिणाम फल आज भारत में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, सबसे बड़ा नदी गंगा नदी, गंगोत्री से लेकर के बंगाल, बे ऑफ बंगाल तक, कलकत्ता तक वो नदी पे थे, सबसे बड़ा नदी है तो कहाँ है भारत में, उत्तर प्रदेश चले, वो बिहार में भी जाता है, अन्य राज्यों में भी जाता है, वो अलग बात है, परंतु मेरे कहने की भाव ये है, आप सभी ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा, तपस्वी आत्मा, सेवादारी आत्मा, एक बाबा को प्रत्यक्ष करने का कोई विशेष कार्य किया है, उसका फल स्वरूप परिणाम स्वरूप इतनी बड़े नदी भी है, इतने बड़े सागर में जाते हैं। इसके लिए आप सबको ये आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्म गौरव होना चाहिए, आत्म रक्षा करने के लिए शक्ति होना चाहिए। बल्कि इस समय में अलग परिस्थितियां हैं, वो परिस्थिति आप सभी जानते हैं, परंतु उस परिस्थिति को चेंज करने का एजेंट फॉर अ चेंज, एजेंट फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन, एजेंट फॉर अ न्यू वर्ल्ड, वो आप बन सकते हैं, आप है, परंतु उसको रियलाइज करके उसको ऐसे स्थान को बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर वो दिमाग बाबा ने दिया हुआ, वो वरदान बाबा ने दिया हुआ, परंतु उसको यूज करना हमारा कर्तव्य है, उसको साकार करना हमारा कर्तव्य है, उसको इस धरा पर यूज करके इस आत्मा को एक एक ऐसी बाप समान बने, टावर ऑफ लाइट बने, टावर ऑफ माइट बने, टावर ऑफ पीस बने, टावर ऑफ हैप्पीनेस बने, टावर ऑफ ट्रूथ बने, टावर ऑफ ब्लिस बने। केवल बाबा ने खुद अपने जीवन को, जब माउंट आबू में जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, प्रकाश स्तंभ जिसको टावर ऑफ नॉलेज कहते हैं, ऐसे ही टावर ऑफ प्यूरिटी कहते हैं, टावर ऑफ माइट कहते हैं, टावर ऑफ बाबा का विजडम कहते हैं। मतलब ये केवल एक स्थूल सिंबॉलिक में भी बाबा का उधर दिया है, परंतु हम सभी चैतन्य मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति, मूविंग मूर्ति, संकल्प करने वाले, वरदान देने वाले, वरदान को रिसीव करने वाले बाबा से, और वरदान को वर्षा के रूप में समाज में फैलाने वाले हम सब विशेष आत्माएं संगठित है, परंतु उसको साकार करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। एक एक सेकंड, एक एक, बाबा ने भी कहा कई बार, कई मुरलियों में सम्मुख में बाबा कहा, सूक्ष्म रूप में कहा, ब्राह्मणों का विशेष शक्ति है संकल्प, ब्राह्मणों का पावर ही संकल्प है। इस संकल्प को व्यर्थ में, वेस्ट में ना जाए, एक एक संकल्प शक्तिशाली संकल्प के रूप में उभर के आए, एक एक संकल्प साकार होते जाए, एक एक संकल्प वरदान के रूप होते जाए, एक से एक एक संकल्प दूसरों को हिम्मत दिलाने, क्योंकि दुनिया एक तरफ हताश, एक तरफ उदास, एक तरफ निराश, निराश हताश उदास की दुनिया चल रहा है, नित्य ये वातावरण बनते जा रहे हैं और गिरावट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे समय पर उनको होप देने के लिए, हिम्मत दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, एक सहयोग की भावना को दिलाने के लिए, स्नेह की भावना को दिलाने के लिए, सद्भावना का दिलाने के लिए, ये सभी कार्य किसका होगा? वरिष्ठों का काम है। ये सभी किसका काम है? ब्राह्मणों का काम है, वरिष्ठों का काम है, ये बाबा का कार्य है। बाबा का किसे करेंगे? बच्चों के माध्यम द्वारा कहेंगे। बच्चे भी किसी को भी टच करना है तो बच्चों को ही टच करेंगे। इसके लिए पहले बाबा का ना योगी बनो, निरंतर योगी बनो, और निरंतर योगी बनेगा आप जहाँ भी है, जिधर भी है, जिस स्थान पर भी है, जिनको आवश्यकता है आपके माध्यम द्वारा बाबा वरदान देगा, वर्षा देगा। परंतु इसमें अभिमान की बात नहीं, अपमान की भी बात नहीं, वह इसमें खुशी की बात है। ये अपने को निमित्त बनना, किसी को भी निमित्त बाबा बनाता है, निमित्त भव, निर्माण भव, निर्मल भव, निमित्त भव बनने के लिए भी सूक्ष्म रूप से बुद्धि की स्वच्छता की जरूरत है, बुद्धि में विश्वासता की जरूरत है, बुद्धि में एकाग्रता की जरूरत है, बुद्धि में आत्मबल की जरूरत है। इसके लिए देखो, हम जब भी दादी प्रकाशमणि जी को देखते हैं, उनके वरदानों का अंतिम समय में दादी ने यही कहा, निमित्त भव, निर्माण भव, निर्मल भव। निर्मल, निर्मल बुद्धि भी निर्मल हो, संकल्प भी इतनी शक्तिशाली हो, और भाव में अभिमान नहीं आए, कोई अपमान भी नहीं है, ड्रामा में कुछ काम नहीं हो सकता है। वह कुछ लोग तो आपके साथ सहयोगी है, कुछ सहयोग भी नहीं है, परंतु इसमें मान और अपमान का चक्कर से नहीं, हम स्वदर्शन चक्रधारी है। मान और अपमान के चक्कर में आने वाले नहीं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी, माया जीत करने वाले, प्रकृति जीत करने वाले, मन मनाभव स्थिति में स्थित रहने वाले। माया हमारे महावीरों को चैलेंज नहीं कर सकते, चैलेंज कर सकता है, परंतु उस चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार करते हुए उसको एक्सेलेंसी में, प्रवीणता में परिवर्तन करने वाले हम आत्मा हैं। माया नहीं आया तो आपको अनुभव कैसे होगा? आपको महावीर कैसे बनेगा? आपकी शक्ति का प्रूव कैसे करेगा? महावीरों के सामने माया आ सकता है, परंतु माया आपको रुका नहीं सकते, माया आपको गिरा नहीं सकता है, क्योंकि माया पहले गिरी हुई है, अभी तो विदाई का समय आ चुके हैं। अभी माया का भी विदाई, माया का राज्य का भी विदाई, सिर्फ माया का ही नहीं, माया का अंश और वंश दोनों का विदाई देने के समय आ चुके हैं। विदाई का भी कंधा कौन देगा? हम भी देंगे विदाई का। जब लास्ट में भी कोई रावण को भी कंधा कई पंडितों ने दिया था, कई पंडितों ने दिया था, ऐसी कलयुग की अंतिम चरण में है। बाबा ने इस साल विशेष करके 31 मुरली में बाबा से जब पूछा, इस साल विशेष क्या करना, बाबा ने थट से बोला था, विनाश। अभी विनाश की नजारा सब जगह में एक तरफ दर्शा रहा है। एक अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, नॉर्थ कोरिया, मैं 35 मिनट्स के अंदर एक देश का भूमि से नक्शा मिटा देंगे, वो उनका चैलेंज है। 35 मिनट्स, 35 आवर्स भी नहीं, 35 डेज भी नहीं, 35 ईयर्स भी नहीं है, 35 मिनट्स की बात कहते हैं। 35 मिनट्स में एक देश के ना उतना ही चैलेंज दूसरे भी कर रहे हैं, मतलब वो मिनट समीप आने का समय है, परंतु वो मिनट क्यों वेट कर रहा है। हम ब्राह्मणों में अभी तक कोई ना कोई संपन्नता की कमी है, दृढ़ता की कमी है, माया जीत बनने में कमी है, विजयी रत्न अपने आप को बनने में कमी है। इसके लिए बाबा ने कहा, एक तरफ इस साल विशेष ग्लोरिफिकेशन, माया को चैलेंज करने की शक्ति ब्राह्मणों में आ जाए और माया को संपूर्ण विनाश की नगारा बजने के लिए, ढंका बजाने के लिए हमारा अंदर मन की शक्ति की चाहिए, विश्वास की शक्ति चाहिए और त्याग की शक्ति चाहिए, तपस्या की शक्ति चाहिए। और त्याग तपस्या और ये मनोबल है, ये मन मनोबल आपको विजयी घोषित करेंगे। भले परीक्षा भी आ सकता है, परंतु ऐसी परीक्षा में भी आपको आगे बढ़ना है। अंधकार के जब अंधकार होता है तब तो लाइट की आवश्यकता है, जब चैलेंज है तब तो चेंज करने के लिए आवश्यकता है, तो अविश्वास है तब तो विश्वास की आवश्यकता होती है। परंतु आपके सामने बाबा का साथ ही है तो विश्वास है। आपको अपवित्रता की दुनिया है, पवित्रता की दीप लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, सत्यता का ज्वालामुखी लेकर के आपके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास सत्यता का मसाल है, वो मसाल है, उसको कभी आपको गिरा नहीं सकते। ऐसी मसाल आपके सामने है, वो मसाल आपको लेकर के चलेंगे, दुनिया आपको आगे चल करके नस्त मस्तिक होकर के आपके समीप आएंगे, आपका समीप आएंगे, आपसे वरदान मांगेंगे, आपसे वर्षा मांगेंगे, आपका अधिकार मांगेंगे। और वर्षा अधिकार क्या है? शांति, शांति की वर्षा मांगेंगे और स्नेह की वर्षा मांगेंगे और दुख से मुक्त होंगी। दुख की दुनिया है, दुख का पहाड़ गिरने वाला है। बाबा ने बहुत साल पहले कहा था दुख का पहाड़ गिरेगा, अभी तो दुख का दुनिया है, परंतु दुख का पहाड़ गिरेगा, अर्थात ऐसी वातावरण बनेगा उसको कोई सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकता है, और देहाभिमानी वालों को तो देखना भी नहीं सकते, वो समझते तो उसके समझ के परे है क्योंकि वो देहाभिमान के चक्कर में है। परंतु त्रिकालदर्शी वाले, त्रिनेत्री वाले, दूरदृष्टि वाले, सूक्ष्म दृष्टि वाले और अभिमान और अपन के चक्कर से मुक्त होकर के साक्षी स्थिति में स्थित होकर के देखने वाले आप सभी बच्चे जो है, विशेष करके ऐसी परिस्थिति में विजयी आत्मा बनकर, बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात क्या है, विजयी आत्मा, फरिश्ता अर्थात एक एक सेकंड भी सफल करने वाला है, फरिश्ता अर्थात एक एक सेकंड दूर बैठे वालों को समीप लाने के लिए, दूर बैठे वालों को याद की यात्रा में उनको शक्ति देने वाले, और एक एक फरिश्ता अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने के कार्य में बाबा की साथ ही रहने वाले। क्योंकि बाबा ने ये पीड़ा उठाया, ये संकल्प बना किया और उस संकल्प को बच्चों के मस्तिष्क में बिठाया, अभी एक एक बच्चे विजयी बनेगा तब तो भारत विजयी बनेगा, एक एक बच्चे देवता बनेंगे तब तो भारत भूमि देवताओं की भूमि बनेगा, उससे पहले ब्राह्मण बच्चे फरिश्ता भवो, क्योंकि इसका यादगार भारत में है, इसके यादगार विश्व के कोने कोने में है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसी फरिश्ता बनकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले। 2018 भगवद गीता के 18 अध्याय समाप्त होने के समय, 18 अध्याय नष्ट मोह स्मृति लब्ध, 18 अध्याय का क्या कहते हैं, नष्ट मोह, कोई भी मोह नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई जाल नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई चीज नहीं, नष्ट मोह हो गया। क्योंकि फरिश्तों का दिमाग देह में नहीं है, फरिश्तों का दिमाग देह की पदार्थों में नहीं, फरिश्तों का दिमाग देह के संबंधों में अटका हुआ नहीं, फरिश्तों का बुद्धि बाबा के साथ है, सदा बाबा का अंग संग में है, तो ऑटोमेटिकली देह में होते भी वे विदेही रहते हैं, देह की दुनिया में रहते हुए परे रहते हैं, देह के संबंधों के साथ रहते हुए उस संबंध को निभाते हुए बंधन में नहीं, कोई बंधन नहीं है, परंतु स्नेही है, पर सहयोगी है, सद्भावना मूर्ति है और सहकारी है, सहयोगी है, परंतु बंधन नहीं है, बंधन से मुक्त हो गया। जब बंधन हो तो वो पाप में कहीं ना कहीं खड्डा खोदते हैं, बंधन हो तो कोई ना कोई बंधन की फंस जाता है, परंतु फरिश्ता माना बंधन आत्मा नहीं है, स्वतंत्र आत्मा। फरिश्ता आत्मा माना क्या है? स्वतंत्र आत्मा, संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। किसी के बंधन है, व्यक्ति के बंधन है, परिस्थिति के बंधन है, परंतु आप स्वतंत्र एक राजा है, एक फरिश्ता एक राजा से भी ऊंचा है। राजा फिर भी प्रकृति के वश हो सकता है, सैनिक का वश हो सकता है, संगठन का वश हो सकता है, परंतु फरिश्ता इनसे भी ऊंचे उठ करके उनको भी सकाश देने वाले, उनको भी प्रेरणा देने वाले, उनको भी बंधन से मुक्त करने वाले, शक्ति देने वाले, ऐसे अनुभव करना ब्रह्मण जीवन की जीवन है। वही ब्रह्मण जीवन की लक्ष्य है, वही ब्रह्मण जीवन का यशस्वी भव की अनुभव है, वही ब्रह्मण जीवन का संपूर्णता की है। अभी तो बाबा का 18 अध्याय भी हो गया, अभी तो आप सबको देखो परिस्थिति भी चेंज हो रहा है। बाबा ने पहले 33 ईयर्स साकार में मुरली चलाया, रात दिन चलाया, सुबह शाम तक तो चलाया, और आज भी देखा बाबा का व्यक्त मुरली सुबह 6 बजे तक, शाम को 7 बजे बाबा आए थे, और उस समय में ओम शांति भवन व मेडिटेशन हॉल में बाबा ने आते थे और इस ओम शांति भवन में आते थे। उस समय में बाबा इतने समय हम बच्चों के साथ व्यतीत कर सकते थे, क्योंकि साकार बाबा का अर्थात अव्यक्त बाबा का दादी गुलजार दादी की तंदुरुस्त था, शक्तिशाली थे, उसको होल्ड कर सकते थे, उतना समय बैठ सकते थे। अभी तो हम क्या बताएं, रिवाइज मुरली सुनना है, रिवाइज मुरली से दृष्टि को लेना है, रिवाइज मुरली से चाहे साकार और अव्यक्त मुरली दोनों रिवाइज कोर्स को रियलाइज करने का, रिवाइज कोर्स को रियलाइज करने की समय आ चुकी है। और भी साकार में अभी तो बाबा कहते हैं आपको मेरे से मिलना है, वह मेरे से प्राप्ति करना है, वह मेरे का अनुभव करना हो तो कैसे करूं, उड़ती कला का अनुभव करते हुए सूक्ष्म वतन में आ जाऊं, मूल वतन में आ जाऊं। हमारा घर मूल वतन है, सूक्ष्म वतन इस समय में बाबा का सेवा स्थल है, सेवा स्थल है। मेरा सेवा स्थल में आकर के आराम भी करो और वरदान का भी प्राप्त करो और निश्चिंत भी रहो, और वह विघ्न भी नहीं आ सकता है, निर्विघ्न भी हो जाएगा, विघ्न से पार हो जाएगा, और अब तो फरिश्ता बने। फरिश्ता माना विघ्नों से पार, फरिश्ता माना आराम करते हुए भी विश्व को सकाश देने वाले उनको, नहीं तो दुनिया के लोग तो आराम नहीं है उनको, परंतु सेवा में तत्पर रहना, निरंतर तत्पर रहना, जैसे हमारा दादिया निरंतर बुद्धि से तत्पर रहते हैं, सकाश देते हैं, ऐसे ब्रह्मणों को भी सकाश देने का समय आ चुकी है, और सारी धरती को सकाश देने का। धरती एक तरफ पंच तत्व भी अभी तमो प्रधान के परिणाम स्वरूप अब परिवर्तन होना चाहते हैं, तमो प्रधान इतनी तमो प्रधान प्रकृति हो चुका है, उसका कोई मापदंड नहीं जिसमें माप करके इतनी परसेंटेज तमो प्रधान है और इतनी परसेंटेज बाकी है, इतनी 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 तमो प्रधान है, हर क्षण हर घड़ी हर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है और ऐसी चेंजेस होता रहता है, उसको अनप्रिडिक्टेबल अनबिलीवेबल उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, विश्वास भी नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति सारी दुनिया में सारी धरती पर सारी विश्व में सभी देशों में हो रहा है। ऐसी समय पर ब्रह्मणों का ओनली मोस्ट प्रिडिक्टेबल मोस्ट स्टेबल, ब्रह्मणों का बुद्धि क्या है, मोस्ट प्रिडिक्टेबल मोस्ट स्टेबल मोस्ट, हो सकता है कोई एक दो को न 100 में 10-12 लोगों को अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, स्टेबल भी ना हो सकता है, परंतु उसका कारण उनका खुद की संस्कार है, वह अज्ञानता के कारण है, वह आदतों का कारण है, वह कोई माया का वशीभूत के कारण है। अभी उनको अभी तक भूतों से मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि उसको जब भूतों से मुक्त नहीं हुआ कोई ना कोई परिस्थिति उनको मुक्त करने के लिए कोई ना कोई चैलेंजेस लाएगा। अभी तो बुद्धि इन चीज़ों से मुक्त होकर के एक एक ब्राह्मण मूविंग लाइट हाउस एंड माइट हाउस बने, मूविंग लाइट हाउस, एक एक घर हम कहते हैं ना भारत स्वर्ग भूमि था, परंतु स्वर्ग भूमि तब था जब एक एक घर में लाइट अवस्थे, एक एक घर शांति का शिखर में थे, एक एक घर पवित्रता का स्थल था, एक एक संबंध दिव्य संबंध था। हमारा संबंध दिव्य संबंध, आसुरी संबंध नहीं, अपवित्र संबंध नहीं, लालच का संबंध नहीं, स्वार्थ का संबंध नहीं। और स्वार्थ लालच अपवित्र संबंध होता है वो तो बंधन में फंसाता है, दुख में फंसाता है, भय से जीवन जीते हैं, अस्थिरता से जीवन जीते हैं। हमारा जीवन ऐसा नहीं, निस्वार्थ जीवन है, त्याग के जीवन है, तपस्या के जीवन है और भरपूर जीवन है। बाबा हमारा साथ है, जब बाबा हमारा साथ है तो किसी चीज़ की किसी कमी को ऑटोमेटिकली बाबा भरपूर कर देगा, ये विश्वास की बात है। इसके लिए जो हमारा संबंध जो है, तपस्वी की संबंध, फरिश्तों का संबंध, शत प्रतिशत 100% बाबा के साथ है, तो उनको आगे सोचने की जरूरत नहीं और अविश्वास करने की जरूरत नहीं। निश्चय ही निश्चय है, विजय ही विजय है और प्राप्ति भी प्राप्ति है। इसके लिए बाबा कहते हैं एक हाथ में भाग्य विधाता, एक हाथ में भाग्य। हमारा भाग्य इतना ऊंचा है और भाग्य विधाता हमारा साथ है। इसके लिए वो भाग्य विधाता हमारा साथ है, भले जोर से ताली बजाओ, क्योंकि खुशी की बात है। क्योंकि भाग्य विधाता साथ है तो भाग्य तो अपने आप भाग्य की रेखा लिख। लोग हम भक्ति मार्ग में सुनते थे ब्रह्मा को हमारा तकदीर लिखता है, हमारा भाग्य की तकदीर लिखता है था, परंतु वो कब था, किस समय था? संगम युगी अमृत वेला, संगम युगी अमृत वेला है, केवल दिन की अमृत वेला नहीं, संगम युग में सुबह शाम रात दिन अमृत वेला ये। क्योंकि इस समय में भारत में दिन है, कई देशों में रात है, कई देशों में अमृत वेला है, कई देशों में सूर्य अस्तम हो रहा है, कई देशों में सूर्य उदय हो रहा है, परंतु बाबा को दोनों बच्चों को इस समय में कुछ विशेष सेवा कर रहा है और उसका परिणाम स्वरूप सारे संगम युग में हर घड़ी अमृत वेला है। इस अमृत वेला को अपने जीवन में, ब्राह्मणों का जीवन को अमृत वेला है, अमृत की वर्षा हो रहा है, अमृत वेड़ के इस अमृत घड़ी को हम यूज करते हुए आगे बढ़ते रहना। अमृत वेला जो है हमारा संगम युगी पूर्ण अमृत वेला है। क्यों? हम हर एक सेकंड अमृत पी रहे हैं, हर सेकंड अमृत पिला रहे हैं, हर सेकंड अमरत्व की ओर ले जा, अविनाशी आत्मा, अमर आत्मा, विजयी आत्मा बाबा कहते हैं, अविनाशी आत्मा। परंतु विनाश का तब होता है जीवन में कोई अप्राप्ति है, जीवन में कोई कमी है, जीवन में अज्ञान है, जीवन में अंधकार है, तब तो उनके जीवन में कोई भय है, तब तो उनके अंदर विनाश होता रहता है। परंतु हम आत्मा अविनाशी आत्मा है, अविनाशी आत्मा के साथ अविनाशी प्राप्ति है, अविनाशी प्राप्ति के साथ साथ अविनाशी बाप भाग्य विधाता हमारा साथ है। ये साथ ये अनुभव जिन्होंने करता है तो उनके जीवन में निश्चिंत, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निरामय स्थिति अनुभव, निश्चिंत स्थिति, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो भाग्य बाबा ने क्रमानुसार बनाया होगा, इसके लिए निश्चिंत है, इसको कोई चिंता की नहीं है, चिंता से मुक्त और भय से मुक्त। भय तब होता है, पापियों को भय होता है, दुखियों को भय होता है, अज्ञानियों को भय होता है, अपवित्र आत्मा को भय होता है, असत्य से दूर होकर के वंचित होकर के झूठ बोलता है उनको भय होता है, उनका सारे जिंदगी में भय से जीता है। हम तो निर्भय है, क्यों? हमको तो सत्यता की साथ मिला हुआ, पवित्रता का वर्षा मिला हुआ। सत्य के लिए ब्राह्मण जीवन में, फरिश्ता जीवन में भय की अंश मात्र भी नहीं रह सकता है, निश्चिंत रहता है, निर्भय। निर्भय होगा तो ऑटोमेटिक, क्योंकि उनकी संबंधों में भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति अप्राप्ति की व लेन देन की बात नहीं। हमारा लेन देन सब बाबा के साथ है। जो भी हमारा बाबा ने कहा था इस साल आरंभ के दिनों में भी, आपका एक एक संकल्प, एक एक पैसा वरदानों की वर्षा के रूप में दूसरों को भी देना है, इसके लिए बाबा ने हम लोगों को अमरत्व की वरदान दिया, अमर आत्मा, अविनाशी आत्मा, वो केवल आत्मा ही नहीं है, हमारा प्राप्ति भी अमर है, हमारा भाग्य भी अमर है, हमारा वर्षा भी अमर है। नहीं तो आत्मा तो अविनाशी तो है, परंतु भाग्य और वर्षा और आस्ति ये सब हमारा साथ चल रहा है, उसके कारण से सत्ययुग बनेगा, उसी कारण से सत्ययुग में वर्षा का अनुभव करेंगे, परंतु उसका अनुभव का झलक संगम युग में ही हम सबको अनुभव करना। संगम युग में बाबा ने यह वरदान दिया है और साथ भी दे रहा है, परंतु मेरा विनम्र निवेदन इतना ही है, ब्राह्मणों अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना संकल्प वेस्ट नहीं करना और अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं करना, और हर समय बाबा और बाबा की सेवा में लगाते रहो और हजार गुणा वृद्धि होते रहे। बाबा ने पहले ही कहा हुआ, आप एक कदम आगे रखेंगे तो मैंने 100 कदम 1000 कदम आपको आगे ले जाएंगे। अभी तो कदमों का पद्मों का भाग्यशाली बन, आपका एक एक कदम पद्मों पद्मापति बनने वाला, पद्मापति भाग्यशाली बनने वाला। इसके लिए ब्राह्मणों का कदम केवल चरण का बल नहीं है, बुद्धि का कमल, बुद्धि का पाद है, बुद्धि की संकल्पों के कदम है। एक एक कदम आपको हजारों लोगों को भाग्य बनाने का है, खुद का भी भाग्य बनाना है और भाग्य विधाता का दर्शाना है। ऐसे भाग्य विधाता को दर्शाने वाले, भाग्य बनाने वाले, भाग्य की विधि को भी बताने वाले, ऐसी विश्व को एक नया शक्ति का वरदान देने वाले, नए राज्य को, नई परंपरा को, नए इतिहास को रचने वाले आप सभी इतिहास पुरुष, युग पुरुष, संगम युगी वरिष्ठ आत्माओं को प्रणाम करते मैं वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।